बीबीसी इंडिया बोल 1 दिसंबर दिन शनिवार, मैं हूं वात्सल्य राय। कभी आय दुगनी करने का वादा तो कहीं कर्ज माफी का ऐलान, फिर भी क्यों नाखुश है किसान? क्या किसान की असल दिक्कत से सरकार है अनजान? बार बार सड़क पर उतरने को क्यों मजबूर है किसान? इंडिया बोल में आज इसी सवाल की पड़ताल। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन कीजिए 1811 7000 और 1811 7001 पर। बतौर मेहमान चर्चा में हिस्सा लेंगे वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह और बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली। चर्चा के लिए थोड़ा इंतजार, पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। अमेरिका के पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश का 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके सबसे बड़े बेटे पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपने पिता को महान व्यक्तित्व वाली शख्सियत बताया। राष्ट्रपति बनने से पहले जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश विभिन्न पदों पर रहे थे। वो रोनल्ड रीगन के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। 1988 में चुने गए बुश उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी। सोवियत संघ का विघटन हुआ था और इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था। उन्होंने इराक के खिलाफ कामयाब सैन्य अभियान चलाया था, मगर वो दूसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन पाए। उन्हें बिल क्लिंटन से हार का सामना करना पड़ा था। अमेरिका के राष्ट्रपतियों का इतिहास लिखने वाले मार्क अब्दर ग्रोव ने बीबीसी को बताया कि बुश की कूटनीतिक योग्यता का ही नतीजा था कि शीत युद्ध शांति से खत्म हो पाया था।
There's no question that George H.W. Bush made an immeasurable contribution in ensuring that the Cold War ended.
इसमें कोई शक नहीं कि जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश का शीत युद्ध को शांति से खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान रहा। मुझे लगता है कि ये उनकी कूटनीतिक योग्यताओं के कारण ही संभव हो पाया। उनके अंदर भरी इंसानियत की भी इसमें भूमिका थी। बुश ने सुनिश्चित किया कि वो जोर शोर से ये न कहें कि शीत युद्ध में अमरीका की जीत हुई है। वो जानते थे कि अगर ऐसा किया गया तो मिखाइल गोरबचेव का नेतृत्व संकट में आ जाता और कट्टरपंथियों का उभार हो जाता। इससे सोवियत संघ का विघटन खतरे में पड़ सकता था। अमेरिका के राष्ट्रपतियों के इतिहासकार मार्क अब्दर ग्रोव के शब्द। पूर्व सोवियत नेता मिखाइल गोरबचेव ने शीत युद्ध को खत्म करने में अहम भूमिका निभाने के लिए जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश की तारीफ की और उन्हें सच्चा सहयोगी करार दिया। उनके समकालीन ब्रितानी प्रधानमंत्री जॉन मेजर और दुनिया के अन्य कई नेताओं ने बुश को श्रद्धांजलि दी है। अफ्रीकी देश इथियोपिया में तनख्वाह न मिलने से नाराज स्थानीय लोगों ने 7 भारतीय नागरिकों को बंधक बना लिया है। ये मामला भारतीय कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इंडिया लिमिटेड और स्पेन की कंपनी एल्सामेक्स एसए के साझा उपक्रम ITLS एल्कामेक्स से जुड़ा हुआ है। भारतीय कंपनी के लोगों को बंधक बनाने वाले भी इसी कंपनी के लिए काम करते थे और 3 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिली थी। नाराज होकर उन्होंने लोगों को बंधक बना लिया है। बंधक बने कंपनी के सीनियर इंजीनियर खुर्रम इमाम ने बीबीसी से अपने दर्द को इस तरह से बयां किया।
प्रधानमंत्री जी और सुषमा स्वराज जी को मैसेज पहुंचाएं सर और अपील करें सब लोग मिलकर कि हमें अपने देश वापस बुलाया जाए सर। बहुत मतलब परेशानी में हैं, आपको अपना दर्द बयान नहीं कर सकते हैं। हम लोग सर 5 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है, हमारे फाइनेंशियल हालत भी अच्छी नहीं है पर्सनली हम सब लोगों की, और यहाँ पे जो हम लोग अभी तकलीफ उठा रहे हैं इसको मतलब साझा नहीं कर सकते, आपको बयान नहीं कर सकते, स्पीचलेस हैं, कैसे आपको इसको हम साझा करें। आप
ये थे इथियोपिया में बंधक बनाए गए 7 भारतीयों में से एक खुर्रम इमाम के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यमन की सरकारी सेना और हूती विद्रोहियों के बीच ताज़ा संघर्ष की खबरें आई हैं। हूती विद्रोहियों का रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होदीदा बंदरगाह पर कब्जा है। मेडिकल सूत्रों का कहना है कि 8 विद्रोहियों की मौत हुई है और सरकार समर्थित बलों में से 2 की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि शहर के दक्षिण और पूर्वी हिस्से में शुक्रवार को झड़पें शुरू हुई और शनिवार तक जारी रहीं। संयुक्त राष्ट्र यहां पर शांति वार्ता करवाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हिंसा जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि आगे भी हिंसा जारी रहती है तो बंदरगाह पर कामकाज ठप हो सकता है। इससे अकाल से जूझ रहे लाखों लोगों तक मदद पहुंचाने में भी समस्या आ सकती है। ईरान की पत्रकार और महिला अधिकार कार्यकर्ता हेनगामेह शाहिदी को 12 से ज्यादा सालों की जेल की सजा सुनाई गई है। उनका मुकदमा बंद कमरे में चलाया गया और जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। शाहिदी ने सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डालने के लिए स्थानीय प्रशासन की आलोचना की थी। शाहिदी को पहले भी जेल जाना पड़ा था। इस बार उन्हें जून में गिरफ्तार किया गया था और मुख्य अभियोजक ने आरोप लगाया था कि वो न्यायपालिका को अपमानित करती हैं। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी इंडिया बोल सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। कभी आए दुगनी करने का वादा तो कहीं कर्ज माफी का ऐलान, फिर भी क्यों नाखुश हैं किसान, बार बार सड़क पर उतरने को क्यों मजबूर हैं किसान। इंडिया बोल में रखिए अपनी राय। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं, टोल फ्री नंबर एक बार फिर आपको बता देते हैं 1811-7000 और 1811-7001। स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह और टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली। स्वागत है आपका, स्वागत तमाम श्रोताओं का भी जो हमें सुन रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंग जीवन की सबसे
कर रहे हैं, अब आखिरी बार इन्हें याद दिलाने आए हैं, अगर ये नहीं जागे इन्हें सोता छोड़ के हम अगला कोई और चुन लेंगे।
रंगों की बात करें तो रंग जीवन की सबसे सटीक तस्वीर पेश करते हैं। बात किसानों की हो तो जो पहला रंग दिमाग में आता है वो है हरा रंग। एक कृषि प्रधान देश हरियाली को खुशहाली से जोड़ लेता है, लेकिन जब वही किसान लाल रंग का झंडा उठा ले तो उसके मायने क्या हैं। 29 और 30 नवंबर को 208 संगठनों के बुलावे पर दिल्ली में जुटे हजारों किसान लाल झंडे उठाए हुए थे। किसानों के हाथ में झंडे दूसरे रंग के भी थे, लेकिन नीले, पीले और हरे झंडे थामे किसानों की आंखों में भी तकलीफ और कुछ हद तक गुस्से की लाली थी। देश की राजधानी में किसानों का यह दर्द पहली बार नहीं छलका है। खेत, खलिहान और मंडियों को पीछे छोड़कर इस साल किसान बार बार दिल्ली का रुख कर रहे हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में तमिलनाडु के किसान 41 दिन तक जंतर मंतर पर बैठे रहे। 2 अक्टूबर को भी किसानों ने दिल्ली का रुख किया और अब देश भर के किसान प्रदर्शन के लिए राजधानी में जुटे। ये तस्वीर सिर्फ दिल्ली में नहीं दिख रही है, देश के कई प्रदेशों की राजधानियों में भी इस साल किसान कई बार सड़क पर दिखे हैं। मार्च में नासिक से मुंबई तक किसानों के ऐतिहासिक मार्च की तस्वीरें अब भी तमाम लोगों की यादों में ताज़ा हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आप किसी भी प्रदेश का नाम लीजिए, अपनी तकलीफ बयान करने के लिए किसानों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। किसानों का एकजुट विरोध इतना प्रभावी होने लगा है कि ये विपक्ष के लिए एकजुटता का काम कर रहा है। कल दिल्ली में 21 दलों के नेता एक ही मंच पर दिखाई दिए। आपको सुनाते हैं कि वहां मौजूद रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा।
हम सब एक होकर स्टेज पे खड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी से हम कहना चाहते हैं, अगर हमें कानून बदलना पड़े, चीफ मिनिस्टर बदलना पड़े या प्रधानमंत्री बदलना पड़े, हम किसान का भविष्य बना के ही रखेंगे और हम एक इंच पीछे नहीं रखने वाले हैं। ये जो शक्ति यहाँ आई है ये हिंदुस्तान के किसान की शक्ति है और ये जो आवाज उठ रही है पूरे देश में, वो आप चुप नहीं कर सकते हैं।
कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल केंद्र सरकार को घेर रहे हैं तो सरकार खुद को किसान हितैषी बता रही है और अपनी तरफ आ रहे सवालों को पिछली सरकारों की ओर मोड़ रही है। किसानों के दिल्ली आने के ठीक एक दिन पहले यानी 28 नवंबर को राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो भी सुनाते हैं।
आज ये जो किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उनको उस समय वो रिपोर्ट देखने की फुर्सत नहीं मिली, अलमारी में रख दिया। मोदी आया, उसने सारा निकाला, देखो भाई मेरे किसानों का कुछ करना है। भाइयों बहनों, मोदी सरकार ने किसानों को 1.5 गुना लागत का 1.5 गुना MSP देना शुरू कर दिया। भाइयों बहनों,
अगर सरकार और विपक्ष दोनों ही किसानों के लिए संवेदनशील हैं तो उन्हें सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है, ये सवाल पूछेंगे हरवीर सिंह जी से। लेकिन पहले सुन लेते हैं एक श्रोता की बात जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात।
नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक मोदी, मैं हैदराबाद तेलंगाना से बोल रहा हूँ।
जी डॉक्टर विवेक,
मैं एक वेलनेस ट्रेनर हूँ।
हाँ जी जी, क्या क्या
मुझे लगता है ये जो किसान, मुझे लगता है ये जो किसानों की समस्या है इसमें दो एंगल है, एक तो लॉन्ग टर्म चीज है, सॉल्यूशन है, और एक शॉर्ट टर्म चीज है।
जी
हर बार हर सरकार इसको जन लुभावी बनाने के लिए शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के अंदर अगर लग जाएगी तो इसका सॉल्यूशन हमें अगले कई सालों तक नहीं मिलने वाला है। मुझे लगता है इस संदर्भ में मोदी सरकार ने कुछ तो किया है, जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड या फसल बीमा योजना, काफी कुछ उन्होंने संभावना जितना उनसे बन पड़ता है मुझे लगता है कोशिश की गई है,
उन्होंने कोशिश की है। आपको ऐसा लगता है? अपनी बात रखने के लिए शुक्रिया हरवीर जी, मैं आपके पास आऊंगा। पहले बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली से जान लेते हैं, जिन्होंने दो दिन तक इस किसान मार्च को कवर किया। फैसल साहब, आपने इस मार्च को कवर किया, किसानों का क्या कहना था?
देखिए, किसानों की बहुत सारी बातें कहनी थी। जो एक श्रोता अभी फसल बीमा योजना की बात कह रहे थे, वो पहले अखबारों में छप चुकी है कि उसमें किसी खास किस्म की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको फायदा पहुंचाया ज्यादा जा रहा है। किसानों का तो ये कहना था कि हमारी जो बर्बादी होती है उसके पैसे तक नहीं मिल पाते हमें। जम्मू से जो किसान आए थे उनका कुछ दूसरा कहना था कि जो बॉर्डर से गोलियां चलती हैं उसका कोई फायदा नहीं मिल पाता। डेढ़ गुना जो लागत की बात है उसके बारे में किसान कह रहे थे कि वो भी एक तरह का झूठ है, क्योंकि किस आधार पर तय होता है कि हमारा कितनी लागत थी और उस पर कितना पैसा। तो एक नाराजगी थी और उनका कहना था कि बद से बद हालत बदतर हुई है और मोदी सरकार को वो इल्जाम इसलिए देते हैं क्योंकि मोदी साहब ने वादा किया था बेहतरी का, जो वो किसानों का दावा है कि वो नहीं कर पाए।
जी हरवीर जी, मैं आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। आपने एक श्रोता की बात सुनी, हमने किसानों की बात सुनाई, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी दोनों की हमने आपको बात सुनाई। सरकार कहती है किसानों की वो हितैषी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां किसानों का कर्ज भी माफ किया गया है। प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक दाम बढ़ा दिए गए हैं, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात होती है। लेकिन फैसल साहब जो कह रहे हैं कि किसान कहते हैं हम तक नहीं पहुँच रहा है, क्यों बार बार सड़क पर उतर रहे हैं?
हाँ, ये आपने ठीक कहा है कि अगर इतना कुछ कर दिया गया है तो फिर किसान को सड़क पर नहीं आना चाहिए। असल में सबसे बड़ा इसका जवाब यही है कि किसान की जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। जो वादा उससे किया गया था वो वादा पूरा नहीं हुआ है। आप बीच में कुछ ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं जो कि लगता है कि आप दिखाने की कोशिश कर दें कि पूरा हो गया या आपने वो काम कर दिया जिसका आपने दावा किया था, लेकिन जो जिसके लिए काम किया जब वो मानने को तैयार नहीं है कि मुझे ये फ़ायदा मिला या नहीं मिला, वो खुद यहाँ पर दिल्ली में आकर के खड़ा हो गया, आपके सामने खड़ा हो गया
और बार बार आ रहा है
आपने बिल्कुल सही कहा कि और अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा होता है जब वो कहीं होता है तो जनता को दिखता नहीं है। इसमें मैं कहूँगा कि जो राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन शेखावटी में हुआ था पिछले साल, उसको मीडिया की कवरेज ही नहीं मिली थी। तो बेसिकली चिंताजनक बात है कि किसान का जो मसला है वो वाकई बहुत बड़ा है और उसमें सिर्फ आप टिंकरिंग करके थोड़ी बहुत ही चीज़ों को बदल करके उस संकट को हल नहीं कर सकते। आपको समग्र रूप से एक ऐसी रणनीति बनानी होगी जिसका एहसास किसान को भी हो कि वाकई उसका जो संकट है उसको हल करने की दिशा में काम हो रहा है।
यानी केवल वादों से बात नहीं बनेगी। हम आपके पास लौटेंगे हरवीर जी। एक और श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। जी, अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
नमस्कार सर।
जी नमस्कार।
हाँ सर, मैं संजय बोल रहा हूँ हरियाणा से।
जी बताइए, अपनी बात रखिए।
हाँ सर, मैं एक प्रगतिशील किसान हूँ और मेरी उम्र 37 साल है। मैं पिछले 20 सालों से खेती कर रहा हूँ।
जी
तो सर, भारत में बहुत सारी सरकारें आई गई, वादे करती हैं लेकिन वादों को निभाती नहीं।
जी
दूसरी बात सर, हमारे पास एक उदाहरण है इसके बाद जो सिक्किम है। सिक्किम एक भारत का जैविक राज्य बन गया है, उसमें मतलब किसान आत्महत्या कर रहे हैं ना कोई, वो एक राज्य सरकार ने वहां प्रोग्रेस किया है। लेकिन यह सरकार वादे तो करती है, जैसे MSP है कह दिया, लेकिन वास्तव में धरातल पर कभी नहीं उतरता। तो ये सबसे बड़ी
धरातल में नहीं उतरता आपका ये कहना। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
हेलो
जी।
हाँ जी, मैं भाई साहब प्रणाम, मैं अनिल डोबरियाल, विकास खंड द्वारिकाल, ग्राम बुरासी पोस्ट भांगा, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से बोल रहा हूँ भाई साहब।
जी अनिल जी, अपनी बात रखिए।
भाई साहब, जो ये बात कर रहे हैं किसानों की बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि डेढ़ गुना हमने किसान के दामों को बढ़ा दिया, वास्तव में धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है किसानों के विषय में। कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, किसानों के प्रति कोई भी गंभीर नहीं है। किसान इस देश के अन्नदाता हैं और इन्होंने किसानों को इग्नोर कर दिया। इन्होंने किसानों की कोई भी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया। अब जो भी आने वाले लोकसभा के चुनाव है 2019 में, तो किसानों को लुभाने के लिए बार बार कई प्रकार के वायदे करते रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा देता। अब यही कारण है कि जो किसान आज आंदोलन कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज बात है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब।
जी, किसानों के मुद्दों पर लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ इस हफ्ते बीबीसी के दफ्तर में आए थे। उनका कहना था कोई भी शख्स अगर खाता है तो उसका किसान से नाता है, यानी रिश्ता हम सभी से जुड़ा है। लेकिन एक तस्वीर किसानी से रिश्ता तोड़ने की है। हरवीर जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमारे सीनियर साथी शकील अख्तर साहब ने इसी आंदोलन के दौरान स्वराज इंडिया के जो अध्यक्ष हैं योगेंद्र यादव साहब, उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा कि देश में कोई किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। आंकड़े भी सामने रखे जाते हैं कि 20 साल में 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की। सरकार ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में खुद जानकारी दी थी कि हर साल 12,000 से ज़्यादा किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, यानी हर दिन 32 के लगभग किसान होते हैं। तो क्या ज़मीन पर हालात वाकई बहुत खराब हो चुके हैं?
देखिए, सीएसओ का सर्वे खुद नेशनल सैंपल सर्वे खुद कहता है कि 70-80% किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। अब ये बताइए मुझे कि जो हमारा एवरेज जो आमदनी है इस देश में किसानों की, वो 7,000 रुपया से कम है महीने में, और ये एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों तरह की आमदनी मिला करके है। अगर आप उसमें से नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी निकाल देंगे तो ये आधी रह जाती है। कौन शख्स अपने परिवार का जीवन यापन इतनी कम आमदनी में कर सकता है, तो वो क्यों खेती में रहना चाहेगा? उसका जवाब ये है
जी। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि लगातार जो हमारा खाद्य उत्पादन है वो बढ़ रहा है, कीमतें फसलों की ज़्यादा मिल रही हैं, दाम सरकार बढ़ाने के वादे कर रही है, लेकिन एक प्रगतिशील किसान जो अभी हमारे श्रोता के रूप में जुड़े, उनका कहना था जमीन पर ये चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं।
देखिए, विडंबना है ये कि हम लोग लगातार उत्पादन में रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, वो खाद्यान्न हो, वो दूध हो, वो फल और सब्जियां हो, और बड़ी बड़ी खबरें आती हैं कि हमने दुनिया में पहले नंबर पे चले गए, दूसरे नंबर पे चले गए। उसके तब तक कोई मायने नहीं है जब तक उस किसान को उपज का सही दाम नहीं मिलता जिसने उसका उत्पादन किया है। सरकार ने दाम अनाउंस किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो इस बार बढ़ाया, A2+FL को लेकर के 50% की बात की। हालांकि किसानों का दावा है कि जो C2 लागत है उसके ऊपर 50% बढ़ोतरी का वादा किया गया था, जो पूरा नहीं हुआ है
जी।
लेकिन अभी भी जो दाम है, मैं आपको बताऊं, जैसे धान का दाम 1700 रुपये से ज़्यादा इस वक्त है जो अनाउंस हुआ है, लेकिन कई राज्यों में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश किसानों को 1400-1200 रुपये में दाम में बेचना पड़ रहा है। ये जो श्रोता आपके जो हरियाणा से बोल रहे थे, उन लोगों ने 5,000 रुपये क्विंटल तक बासमती धान बेचा, आज वो धान 2800-2500-2400 रुपये में बिक रहा है। और पिछले साल तो यह हालत हो गई थी, किसानों ने कहा उस धान को आप MSP के दाम पर ही ले लो, नॉन बासमती रेट पर। तो सवाल है कि लागतें बढ़ी हैं, दाम नहीं मिल रहा है, दाम देने की व्यवस्था पुख्ता नहीं है। हम कई बार सर्वे कहते हैं कि 5% किसानों को MSP का फ़ायदा मिलता है, 10% को मिलता है, कई लोग विकल्प लेके आते हैं इसको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दीजिए, ऐसा नहीं है। जो खामी है आप उसको दूर कीजिए,
ना के बिना बात नहीं बनेगी,
ना के आप नई व्यवस्था की तरफ चल दीजिएगा
जी।
तो सवाल है कि जो आपने कहा उसको आप कीजिए, और अभी भी मेरा मानना है जो दाम अभी भी अनाउंस्ड है, जब C2 के ऊपर 50% मिलेगा वो बाद की बात है, ये भी दाम अगर किसानों को मिल जाएंगे तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा,
बदलाव आ सकता है, ये सरकार को समझने की जरूरत है। हरवीर सिंह जी कह रहे हैं, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं जी। अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
राजेश कुमार शुक्ल बोल रहे हैं, सर बहादुरपुर उत्तर प्रदेश से
जी। राजेश जी अपनी बात रखिए।
हाँ, ऐसा है कि हमारे देश का एक कैबिनेट मिनिस्टर अगर ये कहता है कि हम सरकार में ये नहीं जानते थे कि आएंगे और आ गए, और श्री राधा मोहन सिंह जी भी कहते हैं कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की पोजीशन में है नहीं
जी,
तो फिर किसानों का ये कितना हित कर पाएंगे और कितना संवेदनशील सरकार है इन मामले
जी,
में।
सरकार से सीधा सवाल। एक और श्रोता हमारे साथ है, उनकी बात भी सुन लेते हैं जी। अपना
हेलो।
जी अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
सर मैं नाथुराम मुरावते बोल रहा हूँ, गाँव बरवाला तहसील मकराना जिला नागौर राजस्थान से
जी। नाथुराम जी अपनी बात रखिए।
सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को पहले तो किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए फसल का
जी,
ये बहुत ही कम है, और दूसरी कर्ज
जी। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनकी बात भी सुन लेते हैं जी।
मैं कुमारी प्रियदर्शनी रानी बोल रही हूँ, बिलाइंट बरेली उत्तर प्रदेश से
जी। प्रियदर्शनी जी अपनी बात रखिए।
मैं ये कहना चाहती हूँ किसानों को अपने उत्पाद का पूरा मूल्य नहीं मिलता है, जो बड़े किसान हैं उनको भी नहीं मिलता है, जो छोटे किसान हैं उनको तो ज़्यादा नुकसान होता है, जो जैसे सब्जियाँ वगैरह पैदा करते हैं उनके लिए तो कई बार ऐसा होता है सड़क पे सब्जी फेंकनी पड़ती है, खेत जुतवाने पड़ते हैं। मेरा भाई जो है खेती करता है सब्जी की, और जो है उनके लिए कई बार ऐसा होता है फूल गोभी का मूल दाम नहीं मिलता है, उसका उतना उत्पादन शुल्क भी नहीं निकल पाता है, और उनके लिए खेत जितवाने पड़ते हैं। तो सरकार को चाहिए कि वो इतना मूल तो दे कि
जिससे
उसका
कि
जो
कम से कम लागत निकले। बहुत शुक्रिया अपनी बात
लागत है वो निकल आए
जी,
उसके लिए नुकसान ना हो
जी। प्रियदर्शनी जी अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया। हरवीर जी,
लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या कर चुके हैं अब तक, तो ये ऐसा ही होता रहेगा, और फिर किसान अगर खेती करना बंद कर देंगे तो फिर पब्लिक क्या खाएगी
जी। हरवीर जी, जो आपने सुना, प्रियदर्शनी जी जो देख नहीं सकती है अपना दर्द बयां कर रही हैं, हमारे साथ हमारी एक श्रोता हैं, जो लागत है वो भी वापस नहीं आ पा रही है।
हाँ देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि लागत वापस नहीं आती, खास तौर से जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैं, जो सब्जियों की फसलें हैं उनमें, क्योंकि जो सरकार की व्यवस्था है वो करीब 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, और उसमें कोई भी सब्जी शामिल नहीं है।
ये एक दिक्कत की बात है।
दूसरी बात यह है कि हमारा जो मार्केटिंग का जो सिस्टम है वो इतना कमज़ोर है, उसमें ये जो छोटी फसलें हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब सवाल सबसे बड़ा ये, मैं यहाँ ये कहूँगा कि जो हम लगातार बात करते रहे, मीडिया में बात करते हैं, जो किसानों की अपनी एक ताकत होती रही है, जो फार्मर्स लॉबी लगातार बोला गया, हालांकि कुछ हमारे मीडिया के लोग उनको कुलक्स कहते हैं, अब 2 बीघा का किसान, 1 एकड़ का किसान कौन सा कुलक होगा, मैं समझ नहीं पाता हूँ। सो उनकी जो संगठित शक्ति थी वो छिन गई, क्योंकि पूरा का पूरा जो इलेक्शन का सिस्टम हमारे देश में हो गया वो जात बिरादरी और कम्युनल लाइन पे डिवाइड हो गया है। जब वोट डालने किसान जाता है तो बढ़ जाता है, भले ही हमारे 2/3 सांसद दावा करें मैं किसान हूँ लिखने में, अपना एड्रेस दिखाएं, लेकिन जब किसानों का मसला होता है तो लोकसभा आपकी सुनी हो जाती है, विधानसभाओं में चर्चा नहीं होती है। तो ये जो एक संगठित शक्ति की जो दरकार है, और ये कब तक, मेरा मानना है कि किसानों को मांगना नहीं चाहिए, हक के लिए लड़ना चाहिए। और उसमें सुखद बात यह है कि अभी करीब 200 किसानों का जो संगठन बना, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसने कम से कम पिछले 1-1.5 साल में अपनी पहचान बनाई, और जो छिटपुट लोग जो कहीं कहीं संघर्ष करते थे उनको एक प्लेटफॉर्म
पर लाने की कोशिश की। जी मैं हरवीर जी आपके पास लौटूंगा। हमें सोशल मीडिया पर भी कुछ कमेंट मिले हैं, फेसबुक पर आई कुछ टिप्पणियों को मैं पढ़ देता हूं। रवीश कुमार सवाल कर रहे हैं, क्या सबके कर्ज माफ हो सकते हैं, जो किसानों की एक बड़ी मांग है। फैजान अहमद खान की राय है कि ये किसान असल वोट बैंक है, इन्हें जानबूझकर परेशान और मजबूर रखा जाता है। WM चोपड़ा की राय है कि राजनीतिक दल अपने हितों के कारण किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। विक्रम जाटव का सवाल है कि ये किसान चुनाव के वक्त ही क्यों बाहर आते हैं, मतलब इसको राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा सवाल कई बार सत्ता पक्ष की ओर से भी उठता है और आंदोलनों को प्रायोजित बताया जाता है। फैसल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फैसल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये दिल्ली का जो मार्च था, आपने जैसे कवर किया, आपको क्या ये चुनाव के वक्त जो दबाव बनाने की कोशिश होती है उस तरह का मार्च दिखा?
नहीं, उस तरह का मार्च तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जरूर थी कि जब 2019 में अब चुनाव में कुछ महीने रह गए हैं, तो एक बार फिर से जाके सरकार को याद दिलाया जाए कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। लेकिन सवाल ये होगा कि जब यही किसान वापस जाएंगे और जब चुनाव का वक्त होगा, तो या किसान के तौर पर ही वोट देंगे, या फिर वहां भी हिंदू मुसलमान दलित और अगड़ा और पिछड़ा और सारी बातें हो जाएंगी, तो ये सवाल है। लेकिन कई किसानों ने ये कहा कि ये आखिरी बार हम जगाने आए हैं। एक हमारी किसान से बात हुई थी, कई किसानों से, महाराष्ट्र से आए हुए थे और उत्तर प्रदेश से आए हुए थे, हरियाणा राजस्थान से, सबने यही कहा कि हम जगाने आए हैं और अगर नहीं जगेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे,
हम आगे बढ़ेंगे। हरवीर जी, जैसा आपने कहा किसानों की शक्ति की बात की, तो वोट बैंक जो किसान हैं, क्या वो इस बार जो हवा बन रही है, बार बार आंदोलन हो रहे हैं, सड़क पर किसान उतर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि किसान एक वोट बैंक की तरह आएगा, इसीलिए शायद सरकार भी बार बार वादे कर रही है और विपक्ष भी उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहा है?
मैं तो चाहूँगा कि किसान वोट बैंक की तरह से आए, क्योंकि जो अभी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि किसान को वोट बैंक नहीं बनने दिया जा रहा है। जिस दिन किसान वोट बैंक के तरह से फिर से संगठित होगा, और पिछले अनुभव ऐसे रहे हैं कि जब किसान वोट बैंक की तरह संगठित हुआ तो उसने सरकारें बदली हैं, तो और तब तक उसका हल नहीं निकलेगा, ये मेरा मानना है। और जो जिस तरीके से आपके इसमें जो सोशल मीडिया पर जो बातें हुई किसान के कर्ज माफ़ी की, मेरा मानना है कि क्यों नहीं कर्ज माफ़ी हो सकती, क्योंकि उसका भी उतना ही बड़ा हिस्सा है देश के संसाधनों में, देश के जो रिसोर्सेज हैं, देश की जो आमदनी है। इतनी बड़ी आबादी, आज की डेट में भी 50% आबादी का हिस्सा खेती और उससे जुड़े काम धंधों के ऊपर है, तो देश के रिसोर्सेज में भी उनका उतना हिस्सा है। अगर कुछ लाख करोड़ आप उनके लिए छोड़ देंगे, उनके ऊपर खर्च कर देंगे, शायद कोई आपको 3,000 करोड़ 5,000 करोड़ की प्रतिमा ना बनानी पड़े, लेकिन कुछ किसानों के लाखों किसानों परिवारों को आप खुशहाली दे पाएंगे।
जी, उस प्रतिमा के पास भी जिसका आपने जिक्र किया, परोक्ष रूप से पानी के लिए किसान तरस रहे हैं। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
हेलो
जी,
मैं गुजरात जम्मू सर से बोल रहा हूँ, पटेल हसन अली।
जी हसन अली साहब, अपनी बात रखिए।
हाँ, मैं ये मेरा सवाल ये है कि सरकार को किसानों का अर्धा कर्जा भी माफ करेंगे तो ये खुशहाल हो जाएंगे और देश के लिए अच्छा काम करेंगे। ये अन्नदाता है, इसलिए उनका कर्जा भी माफ करें और फसल का भी प्राइस सही रखें, उनके हक में छोड़ दे तो अच्छी बात है।
जी, एक और श्रोता हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
जी, मेरा नाम श्रीकांत तिवारी है सर, मैं मध्य प्रदेश सतना जिले से बोल रहा हूँ सर।
जी, अपनी बात रखिए।
मेरा ये कहना है सर कि पिछले साल 17-18 में खरीफ फसल का जो नुकसान हुआ था उसका आज तक हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। इसका परिणाम सर हम लोगों ने वोटों में प्रदर्शित किया है, रिजल्ट के बाद आएगा।
जी, ये पहले से ही भविष्यवाणी कर रहे हैं हरवीर जी। दो प्रमुख मुद्दे उठाए गए, एक कर्ज माफी, उसमें आप मुआवजे को भी जोड़ सकते हैं, दूसरा फसल का दाम। किसान संगठन चाहते हैं कि इसको लेकर संसद में बहस हो, 3 हफ्ते का सत्र चले, क्या आप ऐसा कुछ होते हुए देख रहे हैं?
देखिए, जो सरकारों का जो रवैया है और जो हमारी संसद में भी जिस तरह से बात हो रही है, उसमें किसानों के लिए 3 हफ्ते का सत्र सिर्फ किसानों के लिए आयोजित होगा, मुझे उसको लेकर के संदेह है, क्योंकि करीब ज़्यादा नहीं तो 22-23 साल मैंने पार्लियामेंट कवर किया है, और जब किसानों के मुद्दे पर चर्चा होती है तो कोरम पूरा होना मुश्किल हो जाता है, लोग बैठते भी नहीं सदन के अंदर। तो लेकिन जिस तरीके से दो मसले इन्होंने रखा कि कानून बना करके इसके ऊपर अमल किया जाए, और कानून बनाने के लिए जो एक तो कर्ज माफ़ी का कानून और एक मुनाफे की खेती, किसानों के फ़ायदेमंद दाम, जो फसलों के फायदे मुनाफे के दाम दिए जाएं, मेरा ख्याल से सरकार को सोचना चाहिए। सारे राजनीतिक दल, अगर 21 राजनीतिक दल 22 राजनीतिक दल एक साथ खड़े हैं और दूसरे करीब 4-5 दल ही दूसरी तरफ बचे हैं, अगर ओवरऑल पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर आप देखेंगे जो रिप्रेजेंटेशन है संसद में, तो सबको मानना चाहिए, जो उसमें मंथन होकर जो निकलेगा उस दिशा में बढ़ जाना चाहिए। इसमें बुरा क्या है? अगर देश की आधे से ज़्यादा आबादी अपने हक के लिए कहती है कि आप हमारे लिए बात कीजिए, डिस्कस कीजिए और उसमें से कुछ रास्ता निकालिए,
बात होनी चाहिए। मैं फैसल साहब से एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूं कि किसान जो दिल्ली से लौटे हैं, क्या आश्वासन लेके लौटे हैं?
देखिए, आश्वासन तो किसी तरह का नहीं है, लेकिन उनको उम्मीद है। और जहां तक हरवीर साहब भी बोले थे और आप भी बोले थे कि सारे राजनीतिक दल जो है, 20 राजनीतिक दलों ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसानों की हालत जो है अचानक से मोदी सरकार में बुरी हो गई है। हमको याद होगा कि कांग्रेस के वक्त में भी इसी तरह से आत्महत्याएं हो रही थी, किसान कर रहे थे। और कल जब अतुल अंजान परसों मुझसे मिले तो मैंने ये सवाल उनसे भी किया कि चाहे वामपंथियों की सरकार हो या दक्षिण पंथियों की है, किसानों की हालत तो वही रहेगी। किसान कह रहे हैं कि हमें आश्वासन नहीं है, लेकिन हम आते रहेंगे और अपनी बात जो है उठाते रहेंगे, लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना है कि हम संगठित नहीं है, इसीलिए कहीं हमें लोग उतना सीरियसली नहीं लेते। और हरवीर जी की बात से मैं एग्री करता हूं कि कोई उतना बड़ा किसान नेता अभी नहीं है मौजूद जो कि चरण सिंह की तरह या महेंद्र सिंह टिकैत की तरह जो इसको राजनीतिक मुद्दे में बदल पाए।
जी, बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास इतना ही है। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हरवीर सिंह जी और फैसल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उन सभी श्रोताओं का भी आभार जो कार्यक्रम में जुड़े, जिन्हें मौका नहीं मिल सका उनसे माफ़ी। इस स्टूडियो का संचालन किया राजेश चौहान ने। अगले सप्ताह फिर ऐसे ही किसी प्रमुख विषय पर इंडिया बोल में होगी चर्चा। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। फिलहाल वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।